आता तो एक वृक्ष को पकड़ करके जोर से उसको हिलाता था, सारे सारे उसके पत्ते थे वो पत्ते गिरा देता था। साल के साल वृक्ष के छोटे छोटे पत्ते बहुत होते हैं उसमें, और बहुत मोटा तना, क्या उसके तने को पकड़ करके सारे पत्ते नीचे गिरा देता था। माने पीले पत्ते तो फिर भी गिर जाए भाई, हरे हरे पत्ते खूब हिलने से गिर जाए, ये बहुत ताकत की बात थी। तो बाली में ये बात थी, एतस्य असमम, इसके समान हमने किसी का पराक्रम राम देखा नहीं है। ये मैंने इसका पराक्रम आपको बताया है। सुग्रीव की बात सुनकर के और लक्ष्मण जी महाराज हंसे, और हंसते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महाराज बानर राज सुग्रीव, हमारे महाराज श्री राम ऐसा कौन सा काम करके आपको दिखाएं कि जिससे आपको विश्वास हो जाए कि अब तो बाली राम के बाण से निश्चित रूप से मरेगा। तब सुग्रीव ने कहा कि देखो, मैं आपको बताया ना कि ये जो साल वृक्ष है, इन साल वृक्षों के सामने बाली आता था। साल वृक्ष का तना बहुत मोटा होता हो, जो सामने आता हो साल वृक्ष सामने, तो खूब कस करके बाण लगाता था। तो एक बाण से साल वृक्ष के अंदर वो बाण घुस जाता था, पार कर देता था, ऐसा उसका बल था। और दुंदुभी की जो हड्डियां थी, उन हड्डियों को कचरा समझ करके, बड़ा निंदनीय समझ करके, बाली ने अपने एक पैर की लात से इन हड्डियों को उठा करके, और उसने दो सौ धनुष जो है फेंक दिया था। सुग्रीव के वचनों को सुनकर के राम जी महाराज भी मुस्कुराए, और फिर उसके बाद सुग्रीव ने देखा कि मेरी बात जो परीक्षा के लिए निकल रही है ये इनको अच्छी नहीं लग रही है। तो सुग्रीव थोड़ी देर तो यूं ध्यान लगाए, ध्यान लगाने के बाद बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने राम जी से कहा कि हे राम, आप बड़े शूरवीर हो, आपका पौरुष बड़ा विख्यात है, आप जो है बहुत जो है श्रेष्ठ हो, परंतु बाली भी महाराज युद्ध के अंदर कभी आज तक पराजित हुआ नहीं है, देवता लोग भी इस बाली के सामने टिक नहीं सकते हैं, और बाली के पराक्रम को कोई पूरा जान भी नहीं सकता है, बहुत पराक्रमी है, ऋष्यमुख पर्वत पर तो आ नहीं सकता है, इसलिए मैं ऋष्यमुख पर्वत पर निर्भय रहता हूँ, नहीं तो बाली तो एक ऐसी आग है कि जिसमें वो युद्ध के समय तो एक तरह से बहुत तेज जो है भभकती है, जैसे आग में घी डालते हैं तो वो भभकती, ऐसे वो भभकती है। मैं सदा उद्विग्न रहता हूँ, शंकित रहता हूँ, अपने मंत्रियों के साथ हनुमान आदि के साथ छिप छिप करके मैं अपना समय निकालता हूँ, तब भी मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मैं डरता ही रहता हूँ, इतना इसका प्रभाव मेरे ऊपर जो है छाया हुआ है। त्वाम हम पुरुष व्याघ्र, आप तो नरश्रेष्ठ हे राम, हिमालय के समान सबको आश्रय देने वाले हो, और किमनु तस्य बलज्ञो हम दुर्भ्रातुर बलशालीन है, वो मेरा दुष्ट भाई बड़ा बल वाला, मैं उसकी क्या क्या बातें कहूँ, अप्रत्यक्षम तो ते क्या बताऊं, उसका जो बल है बड़ा विचित्र है, और आपका बल मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, केवल मैं अनुमान लगाता हूँ और आपकी बात पर केवल विश्वास करता हूँ। मैं कोई आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई आपको अपमानित करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसने क्या क्या बल किया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप कोई कायर हो, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं कोई आपके सामने बाली की झूठी प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं जो कुछ देखा है वो मैंने आपको बताया है। राम जी महाराज मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए राम जी ने अब जो है सुग्रीव को कहा कि हे वानर, यदि नो प्रत्ययोस्मासु, यदि आपको हमारे पर विश्वास नहीं हो तो लो हमारा भी आप कुछ पराक्रम देखो। ज्यादा पराक्रम तो मैं युद्ध के समय ही दिखा सकता हूँ, अभी तो केवल सामान्य पराक्रम दिखाता हूँ। ऐसा कहकर के भगवान सुग्रीव को अपने साथ में लिए और लक्ष्मण को भी साथ में लिए, हनुमान आदि को साथ में लिए और कहा कि बताओ दुंदुभि की हड्डियां कहाँ पड़ी है कि ये महाराज यहाँ पड़ी है। तो राम जी महाराज ने उस समय में उस दुंदुभियों की अस्थियों को अपने पैर के अंगुष्ठ भाग से, देखो उसने तो पूरे पैर से लात लगाई थी और राम जी ने केवल अंगूठे से उसको इतना दूर फेंका कि 10 योजन, उसने 200 धनुष फेंके थे, 200 धनुष, 200 धनुष बोझा, एक धनुष में कहते हैं 3 हाथ होते हैं तो 600 हाथ उसने फेंके और राम जी ने 10 योजन माने 40 कोस, 40 कोस में वो जो है हड्डियां फेंक दी। हड्डियां फेंकने के बाद सुग्रीव ने कहा कि वाह महाराज, पराक्रम तो आपका बड़ा विलक्षण है, परंतु एक बात है कि जिस समय में बाली ने दुंदुभि की हड्डियों को कचरे को फेंका था तो उसकी हड्डी मांस से और खून से भारी बनी हुई थी और सुग्रीव कह रहा है कि बाली दुंदुभि को जब फेंका है तो उस समय बाली खूब लड़ रहा था, लड़ते लड़ते आदमी की कुछ शक्ति कम होती है, वो घबराया हुआ भी था, वो थका हुआ भी था और वो उस समय में मत भी हुआ हुआ था, अतः उसने फेंका है। आप तो महाराज सावधानी से फेंक रहे हो, आप थके हुए भी नहीं हो और इन हड्डियों में मांस भी लगा हुआ नहीं है, खून भी लगा हुआ नहीं है, एकदम सूखी सूखी हड्डियां हैं और आप उत्साह पूर्वक हम लोगों के कहने से आप फेंक रहे हो, उसने स्वाभाविक ढंग से फेंका है, अतएव पूरा पूरा तो हम इस विषय में निर्णय नहीं कर सकते हैं कि बाली का बल ज्यादा है या आपका बल ज्यादा है, क्योंकि हड्डियों के पास में सूखा और गीला पदार्थ भी हड्डी के साथ ही था, अतएव हम ये पूरा नहीं कह सकते हैं। अब आप यदि 1 साल को 1 बाण के द्वारा बीन दे तो हम मान लेंगे, ये कार्य यदि आप करते हैं तो मेरे मन का संदेह दूर हो जाएगा, बाण लेकर 1 साल में आप इसको लगा दीजिए, साल वृक्ष के अंदर आप इसका छेदन कर दीजिए, आप निश्चित रूप से छेदन कर देंगे महाराज, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अलम विमृशेन मम प्रियम ध्रुवम कुरुष्वराजन प्रतिशापितो यथा, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज, आप मेरा प्रिय कार्य करेंगे क्योंकि आपने मुझे सौगंध खा करके कहा है, अतएव मैं परीक्षा की दृष्टि से नहीं, मैं सबको आश्वस्त करने की दृष्टि से कहता हूँ कि आप पहले से ये बात जान लेवे कि बाली के अंदर कितना बल है, क्योंकि राजा लोग शत्रु पक्ष का बलाबल का ज्ञान किए बिना कभी भी चढ़ाई नहीं किया करते हैं, अतएव मैंने आपको इस विषय में निसंदिग्ध किया है, अब आप साल वृक्ष के अंदर बाण लगाकर सबके संदेह को दूर कीजिए और बाली के बल को आप पहचान लीजिए। सुग्रीव की बात सुनकर के राम जी महाराज ने धनुष लिया और धनुष लेकर के राम जी महाराज ने धनुष के ऊपर बाण रखा और बाण रख करके 1 साल का निशाना लगाने के बहाने से राम जी ने 7 जो साल थे उनके ऊपर निशाना लगाया और वो बाण उन्होंने कान तक डोरी खींची और बाण को एकदम छोड़ दिया, छूटते ही वो बाण सनसनाता हुआ गया, एक ही मुहूर्त में एक को बींदा, दूसरे को बींदा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवा, 7 सालों वृक्षों को एक साथ बींद करके और फिर वो गया पताल में, पताल में जाकर के और पताल के अंदर पर्वतों का छेदन करने के बाद वो दोबारा आकर वापस राम जी के तुणीर के अंदर आकर बैठ गया, बंदर लोग सब आनंदित हो गए। सुग्रीव उसी समय में राम जी के चरणों में गिर गया कि वाह महाराज, वाह महाराज, बस अब आप निश्चित रूप से विजयी हो गए। राम जी महाराज के चरणों में गिरने के बाद राम जी ने उसको अपने छाती से लगाया। सुग्रीव ने कहा कि महाराज अब मेरे विश्वास हो गया है कि बाली आपके सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता है। आज तक संसार में ऐसा कोई वीर पुरुष न हुआ न आगे होने वाला है। इन सातों साल वृक्षों को छेद करके पताल में से और पर्वतों में से छेदन करके पताल में छेदन करके बाण को वापिस अपने तुनीर में रख दे, ऐसा कोई दूसरा हुआ न होगा। हे महाराज, आपका बल इंद्र के समान वरुण के समान है और मैं आज ही महाराज अपने भाई को मरा हुआ देखूंगा। हे महाराज, आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें मुझे बहुत बड़ा बल मिला है। बालिनम जहि, अब चलिए महाराज, मैंने आपके सामने हाथ जोड़ दिए, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम जी महाराज ने सुग्रीव को अपने छाती से फिर लगाया और कहा कि चलो सुग्रीव, अब अपने किष्किंधा की ओर चलते हैं। तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार से भगवान सुग्रीव को साथ में लिए हुए, लक्ष्मण को साथ में लिए हुए और सुग्रीव के विश्वस्त बांदरों को साथ में लिए हुए, अब वे बाली के साथ युद्ध करने के लिए किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का प्रसंग आगे सुनाते हैं। भगवान के अनेक अवतारों के चरित्र लिखे हुए हैं, परंतु रामचरित्र सबसे श्रेष्ठ है। रामचरित्र भी अनेक महापुरुषों ने लिखे हैं, परंतु वाल्मीकि जी का अपना अद्वितीय स्थान है। वाल्मीकि जी महाराज के इस रामचरित्र के द्वारा, रामायण के द्वारा बहुत बातों का ज्ञान होता है। बड़ा आश्चर्य है कि शरीर विज्ञान भी वाल्मीकि रामायण में, भूगोल विज्ञान भी वाल्मीकि रामायण में, खगोल विज्ञान भी वाल्मीकि रामायण में, शास्त्र विज्ञान भी वाल्मीकि रामायण में। शास्त्र विज्ञान तो खैर इसमें है ही, भगवान के लीलाओं का रहस्य इसमें है ही, इसके अलावा भी व्यवहार विज्ञान, राजनीति विज्ञान, युद्ध विज्ञान, माने सर्व विज्ञान से भरा हुआ ये हमारा वाल्मीकि रामायण है। ये वाल्मीकि रामायण जहां करुण रस आता है वहां विशेषता से करुणित करता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के प्रकट होने में करुण रस की ही प्रधानता है। जहां जहां विरह की बात आती है, चाहे वो राम के लिए सीता का हो, चाहे सीता के लिए राम का हो, चाहे लक्ष्मण के लिए राम का हो, चाहे राम के लिए लक्ष्मण का हो, चाहे और किसी के लिए किसी का हो, ये विरह के अंदर बहुत ही आगे बढ़ा हुआ काव्य है। हमारे मैथिली शरणगुप्त वे जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी इस करुणा रस के लिए करुणे तू क्यों रोई उत्तर में और अधिक तू रोई, ऐसा करके उसने करुण रस पर जो लिखा है, उन महाकवि ने, मैथिली शरणगुप्त ने, जो आधुनिक कवि हुए, उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण की करुणा को जब देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभवतः शायद ही कोई पृथ्वी पर प्राणी होगा जो वाल्मीकि करुण रस में अपने आप को प्रवाहित न कर देता होगा। कितना भी पाषाण हृदय आकर वाल्मीकि की कथा में बैठ जाए उसका चित्त पिघल ही जाएगा। और वाल्मीकि रामायण में चित्त पिघल जाए इससे बढ़कर और क्या काम चाहिए। जिस प्रकार सुनार सोने के पिघलने के बाद उसको अनेक प्रकार के जड़ाई के काम में लेने में सुगमता का अनुभव करता है, उससे कई प्रकार से उसके आभूषण बना लेता है, ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण भगवान की राम कथा में पिघलता है तो उस समय उसके सारे विकार दूर होते हैं और भगवान के तरह तरह के स्वरूपों में ये आराम से समाविष्ट होता है। सोना जिस प्रकार से प्राप्त किया जाता है पत्थरों की खानों में से, उस सोने को सीधा प्राप्त नहीं करते, सोने के साथ बहुत सी चीजें होती हैं और भी धातुएं मिली भी रहती हैं, पर जब उस सोने को पिघलाते हैं तब और धातु बह जाती है, नष्ट हो जाती है, टूट जाती है और केवल सोना सोना होता है। वो सोना पानी पानी बना हुआ सोना उसको प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के हमारे अनादि काल के हृदय के अंदर बड़े किट जमे हुए हैं, पाप जमे हुए हैं। सत्संग के द्वारा राम कथा के द्वारा जब उनको आंच लगती है तब ये पाप नष्ट होते हैं, सद्भाव पैदा होता है, भगवान की कथा में रुचि पैदा होती है। ये रुचि भगवान की कथा ही कथा में रुचि पैदा करती है। इस कारण से कहा जाता है कि कलयुग के अंदर भगवान की कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण होता है। भगवान ने भी अनेक प्रकार से अपने लीलाओं का विस्तार केवल इसलिए किया कि मेरी कथाओं को लोग सुनेंगे, लोगों का उद्धार होगा। भगवान ने सीता के लिए विरह नहीं किया है, भगवान ने सीता के लिए सुग्रीव के साथ मित्रता नहीं की है, भगवान ने सीता के लिए रावण को नहीं मारा है, भगवान ने और किसी के लिए कोई लीला नहीं की, हम लोगों के लिए लीला की, आपके लिए, हमारे लिए, या भगवान के बाद जो 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 जीव आए उन सब के कल्याण के लिए, आगे भी जो जीव आएंगे उनके कल्याण के लिए। भगवान की लीलाओं में कितना रहस्य छिपा हुआ है ये तो भाई भगवान को प्राप्त होने वाले महापुरुष ही जानते हैं। उन्होंने कृपा करके चरित्र लिखा है और इस चरित्र को किस प्रकार से संजोया है वो सब अपने हृदय में रखने की बात है। देखो आजकल हम लोग अपने छोटे से जीवन में छोटी सी विपत्ति आती है उसमें हम बहुत बड़ी चिंता करते हैं, बड़े घबराहट में फंस जाते हैं, परंतु राम जी ने अपने जीवन में कितनी आफत उठाई है, कितना भगवान ने कष्ट उठा करके हम सबको प्रेरणा दी है कि भाई संसार में ये सब प्रकार की लहरें आती हैं, कभी गर्मी आती है तो कभी सर्दी आती है तो कभी क्या होता है, मेरे से ये बात नहीं चूकती तो आपसे कैसे चूकी जाएगी। जो भगवान कर्म फल से यहाँ जन्म नहीं लेते केवल लीला के लिए आते हैं, उन भगवान के सामने भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है। इसलिए अपने जीवन के इन बहती हुई विभिन्न धाराओं को न देख करके हमको एक प्रभु का सहारा लेना है और विभिन्न धाराओं में बहने वाली इस जगत रूपी नदी को पार करके अपने को भगवान के पास पहुंचना है। तो आइए आप हम सभी वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग में चलते हैं जिसे लवकुश अयोध्या में भगवान श्री राम के सामने गाते हैं और भगवान श्री राम उस कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। ये प्रसंग है किष्किंधा के पास पंपा सरोवर का, ऋष्यमूक पर्वत का प्रसंग है। बाली के विषय में सुग्रीव ने अपनी सारी बात भगवान श्री राम को बताई है। भगवान श्री राम ने बाली का जो भय सुग्रीव के अंदर बैठा हुआ था उसे दूर किया है, परंतु सुग्रीव ने राम जी की परीक्षा ली है। यहां आकर सुग्रीव की भक्ति में कमी आई होती है, भगवान ने उस कमी के कारण से उसको अपनाया नहीं हो सो बात नहीं है। आप देखिएगा भगवान की भक्ति को कितना, भगवान भक्ति को कितना आदर देते हैं। एक बार जो प्राणी भगवान के साथ जुड़ जाता है उसके बाद भगवान उसका पूरा ने निभाने वाले, ये वाल्मीकि रामायण में आ भी जाएगा। सुग्रीव ने कैसा कैसा, देखो आगे जाकर कोई बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करेगा सुग्रीव, परंतु राम जी नाराज भी होंगे, धमकाएंगे भी, डराएंगे भी, परंतु फिर भी एक बात है, राम जी महाराज सुग्रीव को कभी सुग्रीव का त्याग नहीं करेंगे, उसे अपने अपनाएंगे। तो अपनाते तो भगवान है, हम भगवान को क्या अपनाएंगे, भगवान हमको अपनाते हैं, केवल हमको तो भगवान की तरफ सन्मुख मात्र होना है। तो वहां सात ताल वृक्ष का जब छेदन हो गया और वो वाण वापिस आकर राम जी के तुणीर में स्थापित हो गया, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ और तब सुग्रीव ने कहा कि चलो महाराज अब बाली पर चढ़ाई करने के लिए अपने लोग चलते। तो अब अपने भी राम जी के साथ ही ऋषिमुख पर्वत से रवाना होते हैं। देखो कथा में दो बातें आती हैं, कथा में एक तो राम जी के साथ की कथा आती है, एक राम जी के प्रतिपक्ष की कथा आती है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि राम जी के साथ साथ रहे। जैसे रामचरितमानस में वहां राम जी के साथ में तुलसीदास जी रहते हैं, वो बोलते इहां इहां और उहां, उहां माने उधर, उधर का मतलब वहां का तो हम वर्णन कर रहे हैं लेकिन हम वहां है नहीं, लेकिन यहां कहकर के कहते हैं कि यहां ऐसे हुआ। तो यहां तो आदमी नजदीकी के लिए बोलता है, तो और तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि अपने को राम जी के नजदीकी के साथ में वो कथा सुननी चाहिए। सुननी क्या चाहिए, राम जी की कथा में अपने को शामिल होना चाहिए। तो भगवान श्री राम सुग्रीव से गले मिलकर के लक्ष्मण को साथ लिए और सुग्रीव के कई अनुचरों को साथ में लेकर वे किष्कंधा की ओर प्रस्थान किए हैं। बीच में बड़े बड़े कई वृक्ष आए हैं, बीच में गहन जंगल आया है, उस जंगल को वे बहुत जल्दी पार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इसलिए चलते हैं कि आज सुग्रीव के मन में ये लगा है कि राम जी ने प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा के द्वारा जल्दी से जल्दी मुझे अपना कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। वह गया किष्कंधा के पास में गया और राम जी को बताया कि देखो राम अब मैं जाकर वहां बाली को ललकारता हूं, आप पूरी तरह से मेरी सहायता करना, आप तैयार तो है ना। राम जी ने कहा कि तुम संदेह क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वहां जाकर के सुग्रीव ने बाली के सामने जोर से ललकार लगाई, ललकार ललकार करके वो जो है कहने लगा कि हे बाली मैं तुम्हारा छोटा भाई सुग्रीव तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, यदि तुम में मेरे से युद्ध करने का साहस है तो तुम महल के बाहर आओ और इस रणांगण में मेरे साथ युद्ध करो, मैं अपना पौरुष तुम्हारे पर छोड़ता हूं। ये बात सुनते ही बाली अपने गदा को लेकर तुरंत अपने स्थान से रवाना हुआ और बड़े जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बढ़ाता नगर के बाहर आया और बाहर आकर वह सुग्रीव को देखने लगा। और सुग्रीव को देख करके और धमकाने लगा कि सुग्रीव तुम हमको इस प्रकार से आज ललकारने वाले कहां से बल लेकर आए हो, तुम्हारे पास कौन ऐसी ताकत है। सुग्रीव ने और आगे तो कुछ नहीं कहा लेकिन सीधा बाली के ऊपर प्रहार किया और बाली ने सुग्रीव पर प्रहार किया। इस प्रकार से इन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जैसे बुध और मंगल का युद्ध होता हो। आपस में उनके गदाओं से युद्ध हुआ, मुक्कों से युद्ध हुआ, लातों से युद्ध हुआ। एक भाई दूसरे भाई पर बड़ा क्रोध से मूर्छित हुआ शस्त्रों का प्रहार कर रहा है। राम जी महाराज वृक्ष के पीछे छिपे हुए हैं और इन दोनों को एक जैसा मान करके मानो कोई अश्विनी कुमार ही स्वर्ग से आ गए हों, इनमें कोई भेद नहीं समझ रहे हैं। वे बाण अपने कान तक खींच चुके हैं परंतु उनको इस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सा इनमें सुग्रीव है, कौन सा इनमें बाली है। क्यों कि दोनों का कद बराबर, आकृति एक जैसी, वस्त्र एक जैसे, बोलने का ढंग एक जैसा, लड़ाई करने का पैंतरा एक जैसा, लेश मात्र भी दोनों में राम जी ने भेद नहीं देखा। अतएव उन्होंने विचार किया कि इस प्रकार से संदेह के अंदर मुझे बाण नहीं लगाना चाहिए। इसी बीच बाली ने सुग्रीव को उठा उठा करके बुरी तरह से पटका और पटक पटक करके उसके मुख को, उसके छाती में खूब मुक्के लगाए, लात लगाई और उसको एक सामान्य वस्तु के समान उठा करके दूर तक फेंक दिया। सुग्रीव अर्ध मूर्छित हुआ, घायल हुआ, मिट्टी के अंदर जो है सना हुआ, शरीर से कई जगह खून निकल गया है और कई जगह जर्जरी कृत है, कहीं जर्जर हो गया है, कहीं पर वो टूट गया है। इस प्रकार से वो घायल सा हुआ वहां से सीधा ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाने लगा। बाली सुग्रीव के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इधर सुग्रीव से पूरा दौड़ा भी नहीं जाता है परंतु सुग्रीव ने देखा कि ऋष्यमुख की सीमा जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे हर अवस्था में अपने प्राण को बचाने के लिए भागना होगा। बाली ने भी कस करके अपनी ताकत लगा करके खूब दूर तक उसका पीछा किया लेकिन जो ही ऋष्यमुख की सीमा आई बाली वापिस लौट गया। और वापिस आने के बाद मुक्तो यसी त्वम इत्युक्त्वा से निवृत्तो महाबल है, छोड़ दिया है मैंने सुग्रीव, आज तू मेरे हाथ से निकल गया, आइंदे यदि कभी इधर आ गया तो तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से धमका करके बाली अपने महल की ओर आ गया। राम जी महाराज भी बहुत जल्दी जल्दी हनुमान आदि को अपने साथ में लिए हुए सीधे वही पहुंचे जहां पर सुग्रीव पड़े पड़े कर रहे थे। वो न तो उल्टा सो सकते थे न वो पीठ की तरफ से सो सकते थे क्योंकि यदि वो छाती के बल पर सोए तो छाती पर बड़ी चोट लगी हुई और यदि वो पीठ के बल सोए तो पीठ पर चोट लगी हुई, यदि वो करवट से सोए तो करवट तो यहां से पसली सारी टूट गई थी, दोनों तरफ की पसली। अब वो कैसे सोवे कैसे करे, तो उसने बैठने में भी उसके तकलीफ क्योंकि यहां पीछे भी उसके बहुत लात लगने से वो बैठ भी नहीं सकता था। अतएव वो सुग्रीव बहुत घायल हुआ ऐसी जगह पर बैठा जहां अब बैठना भी पड़े, जहां उसके शरीर को थोड़ा आराम मिले। इतने में ही राम जी महाराज आए। उन्होंने सुग्रीव के पास खड़े होकर पूछा, क्यों सुग्रीव? सुग्रीव ने आंख खोल करके उसने राम जी महाराज से कहा। सुग्रीव को बड़ी लज्जा आई, लज्जावान होकर के सुग्रीव बड़ी दीनवाणी में नीचे जमीन पर से जो है दृष्टि डाले हुए कहने लगा, हे राम, पहले मुझे बहुत तुमने उकसाया और तुमने अपना बल पौरुष दिखाया और कहा कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम्हारे कहने से मैं रवाना हो गया। मैं तो पहले से ही जानता था कि बाली में बहुत बल है, तुम्हारी बात पर मैंने विश्वास किया, तुम्हारी प्रतिज्ञा पर मैंने विश्वास किया, तुम्हारे उकसाने पर मैंने विश्वास किया, परंतु राम तुमने ये क्या किया। देखो इससे तो अच्छा यही था कि ऋषिमुख पर्वत पर आराम से मैं पड़ा हुआ था, मुझे बाली ने इतना मारा है, ये देखो मेरी पीठ की हालत, मेरे शरीर की हालत। तुम मुझे पहले ही बोल देते कि देखो मैं बाली से युद्ध नहीं कर सकता, मैं बाली को नहीं मार सकता, तुम यदि पहले मुझे बोल देते तो तुम्हारी और मेरी मित्रता में कोई कमी थोड़ा ही आती। तुमने पहले तो कुछ कहा नहीं और हमको बुरी तरह से आपने इस प्रकार से बाली के हाथ से पिटवा दिया, अब मैं क्या करूं, ततो नाहम इतो ब्रजे। अब मैं आकर के यहां बैठ गया हूं राम, अब मुझे कभी मत कहना कि तुम जाओ और बाली के साथ युद्ध करो। हार करके जो बैठ गया, एकदम हताश हो गया, तब महाराज राघव ने, राम जी ने बड़े दीन वचन से कहा, सुग्रीव मेरी बात को तुम बड़े धैर्य के साथ